भगवान के परम सत्य श्री कृष्ण है उनके साथ अमृता मान लेते हैं.
And then you may go to other organizations, and they may also claim to possess the absolute truth.
तुम और कोई संस्था संप्रदाय में जाओगे तो वो भी शायद सत्य की परिचय देगा.
So who is right and who is wrong?
तो कौन सही है और कौन गलत है?
And we can say that we're right for the following reason.
हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सही मार्ग पे हैं. उसके क्या-क्या कारण हैं हम बताने जा रहे हैं.
Because our knowledge comes directly from Krishna, the Supreme Personality of Godhead.
हमारा जो ज्ञान है वो स्वयं परम सत्य श्री कृष्ण भगवान से आ रहा है.
Coming down in what's called a disciplic succession.
और कृष्ण भगवान के द्वारा जो ज्ञान नीचे प्रदान होते आ रहा है उसी को कहते हैं पारंपरिक ज्ञान.
Just like you hear in the Bhagavad Gita, evam parampara praptam. Imam Rajashayo did Viduhu, where Krishna says that the knowledge of Bhagavad Gita comes down in a what's called parampara, which means disciplic succession.
Bhagavad Gita में चौथा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ ये परंपरा द्वारा नीचे आना चाहिए.
So first there is Krishna, and then after Krishna there is Lord Brahma.
Krishna भगवान तो परम सत्य जो है वो परम रहता है उसने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया.
And after Brahma, there is Narada Muni.
ब्रह्मा जी के बाद ज्ञान ब्रह्मा जी ने फिर नारद को दिया.
And after Narada Muni, there is Shila Vyasadev, the compiler of the Vedic literatures.
नारद मुनि के बाद में फिर व्यासदेव को ज्ञान प्राप्त होता है जो स्वयं सभी वेदांतों की रचयिता है.
And then Shukadev Goswami.
और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी आता है.
And down through the ages to what we call the six Goswamis of Vrindavan.
और नीचे आओगे तो आता है ज्ञान कहाँ पर जो छह गोस्वामी वृंदावन के हमारे वॉटर में उनका फोटो है देख सकते हैं आप.
Because the six Goswamis of Vrindavan are the primary followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is the Yuga Avatar.
और ये जो छह गोस्वामी गण है वृंदावन के ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत नजदीक के भक्त थे. और चैतन्य महाप्रभु कौन है जो कलयुग का युग अवतार है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है.
Therefore, we are called in the Krishna consciousness movement Rupa Nubas, which means followers of Srila Rupa Goswami.
जो लोग कृष्ण भावना में इतने हैं उनको रूपा नुगा कहा गया. क्यों? क्योंकि छह गोस्वामी थे जो रूपा गोस्वामी है उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे.
And so the six Goswamis of Vrindavan had their followers like Srinivasacharya, Shyamananda, and Narottama Das Thakur.
और वो जो six Goswami हैं, उनके भी कई चेले हुए, एक श्रीवास जी हैं, Narottama Das Thakur हैं, ये सब उनके भी चेले बनते हैं.
And they had their followers all the way down to pretty much the present day and age, when we talk about Jagannath Das Babaji Maharaj, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Gaurakishore Das Babaji Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and our spiritual master, His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna
Consciousness. और वो ज्ञान से ऐसे प्रदान होते हुए नीचे आता है फिर जगन्नाथ दास बाबा जी आता है फिर उसके बाद में गौरकिशोर दास बाबा जी आता है फिर वो ज्ञान और नीचे आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के पास आता है फिर उसके बाद में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी आता है जो स्वयं जो कृष्णा भावनामृत आंदोलन का संस्थापक है.
And all these devotees in disciplic succession were teaching exactly the same thing.
तो ये जो पारंपरिक ज्ञान है वो वही बताएगा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया था.
धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम. Because knowledge dharma of dharma, dharma means one's actual constitutional position and the nature of things, can only, pure knowledge can only come down from the Supreme Personality of Godhead.
जो धर्म है धर्म का अर्थ है जो स्वभाव जो हृदय की धर्म है यानी कि हमारे आत्मा की जो धर्म है वो जब हम पहचान कर लेता है और वो आता कहाँ से वो स्वयं भगवान से कृष्ण से आता है क्योंकि जीव कारण से और वो पारंपरिक द्वारा वो ज्ञान में प्राप्त होता है.
So we can say our knowledge is perfect because it is the same knowledge that was given by Krishna to Lord Brahma.
तो हम कह सकते हैं कि जो मार्ग में हम हैं वो पक्का सिद्ध है और सत्य है क्योंकि वो वही ज्ञान में हम चल रहे हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा और परंपरा एक नीचे ज्ञान जो विचरण होते हुए आ रहा है.
So when we present books like the Bhagavad Gita, we present the Bhagavad Gita as it is, without any modern, speculative, nonsense interpretation.
जब हम भागवत गीता को प्रदान करते तो भागवत गीता वही देते जो ऐसे परम सत्य जो तत्व था यानी जैसे कृष्ण भगवान ने दिया था उसी तरह हम आज दे रहे. उसमें कोई संसारिक ज्ञान नहीं, कुछ अपना मिलावट नहीं, कुछ अपना मन घरंती बात नहीं, बस वही ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था.
And when many other groups present the Bhagavad Gita, they present the Bhagavad Gita as they wish it was.
और धर्मों में देखेंगे भगवत गीता के प्रचार तो हो रहा है लेकिन अपना मन घरंती बात बता रहा है जो भगवान बोला ही नहीं था ना ऐसा वो समझा था तो ऐसा प्राणी याद कर रहे.
Like there is one famous person who presented the Bhagavad Gita on that particular verse, Manmana Bhava Madbhakto Madhyaji Mam Namaskuru, where Krishna says, just think of me, become my devotee, worship me. This rascal said, you don't have to do that because Krishna doesn't mean himself.
जैसे एक व्यक्ति भगवत गीता का प्रचार कर रहा था और वो व्यक्ति ये भगवत गीता के श्लोक के मनमना भव भक्तो मम यदि मम नमस्कुरु कह रहा है, ये बात कृष्ण भगवान अपने आप पर नहीं कह रहा है, वो कृष्ण जी नहीं है, उस पर नहीं ध्यान करो.
So we accept exactly what Krishna says. If Krishna says, worship me, I am God, aham bija pradapita, I am the seed-giving father of all the demigods, of all living entities, aham saradehinam, whatever he says, we accept as he says it.
Bhagavan Sri Krishna ne jo Gita mein ghoshna kiya ki main param sat hu, main jagat ka rachayita hu, main pitama hu, jata, mata, sab main hu, char ved main hu, aur main beech hu, 33 crore devi devtaon ka rachayita mere se hua hai. हम परम उस तत्व को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसपे कुछ रद्द बदल नहीं करते.
So these devotees who are taking initiation today are taking initiation in this sampradaya or disciplic succession coming down from Lord Brahma.
आज जितने भक्त लोग दीक्षा समारोह में बैठे हैं जो दीक्षा लेने जा रहे हैं वो आज परंपराइक जो है उसमें आज जुड़े जा रहे हैं.
And they are receiving three types of perfect knowledge.
आज वो तीन तरह के परम सत्य का ज्ञान को स्वीकार करेंगे.
These are called sambandha, abhideya, prayojana. Sambandha, abhideya and prayojana.
और ये वेद के जो तीन तत्व है ये तीन ज्ञान है जो आज ये लोग जान रहे हैं. पहला तत्व है संबंध, दूसरा है अभिद्या और तीसरा है प्रयोजना.
Sambandha means basic knowledge of who you are, what the soul is, who God is, what the material world is, what the spiritual world is, all basic theoretical knowledge.
तो संबंध ज्ञान क्या है जो आज ये लोग कहेंगे. संबंध ज्ञान वो है कि पहले पहचानो तुम कौन हो, हम है कौन, दूसरा भगवान कौन है, तीसरा ये जगत क्या है, चौथा और ये भगवान इस जगत के ऊपर जो धाम है दिव्य धाम वो क्या है, इन सब की परिचय होना चाहिए. इसको कहते हैं संबंध ज्ञान.
And abhideya means what do you do about that now that you have the knowledge? In other words, how do you become perfect using the knowledge in sambandha gyan? So abhideya means how to use the knowledge in sambandha gyan, which for us basically means bhakti, sadhana bhakti, beginning with sadhana bhakti.
Jab aap sambandh samajh jaoge ki aap jeev ho, parmatma ka ansh hai, ye sambandh jab aap jaan jaoge to aap abhideya gyan mein chale jaoge, aap wo karwai karoge jisse aapka jo sambandh ekdam ghanishth ho jayega jisko hum sadhana bhakti kehte hain.
And then finally, prayojana. That means what happens to you when you become perfect, where you go in the spiritual world, what you do in the spiritual world, what your relationship is with Krishna, and how you enjoy eternal blissful, full of knowledge life.
So, ye sambandh jab ho jata hai, to aap prayojana, yani ki aapke jo roza bhakti, aap usme utar jaoge. Ab ye karte rahoge, tab aap prayojana tatve aoge, us gyan mein aoge, yani ki wo prem ka sambandh aap jod loge, aur jab bhagwan ke dikh dham jaoge, wo prem ka sambandh ke saath mein aap koi na koi rishta mein parmatma ki seva karoge.
So to get that knowledge, guess what? You have to read and hear.
Aur wo gyan prapt karne ke liye aapko kya karna padega? Do cheez. एक तो सुनना पड़ेगा और दूसरा पढ़ना पड़ेगा.
So initiation means just to begin, but if you want to perfect that process of initiation, you have to hear Shushushro Shradanasya Vasudeva Kataruchi Shanmahat Sevya Vibra Punya Tirtana Shevanat.
और आज दीक्षा समारोह में जो लोग दीक्षा ले रहे हैं आपको सुनना पड़ेगा वो सुनने से भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो घेरा हो जाएगा
एंड इफ यू डोंट हियर रीड स्टडी योर इनिशिएशन इज नॉट कंप्लीट यू जस्ट बिगिनिंग
इनिशिएशन दीक्षा समारोह की शुरुआत है इसके साथ साथ आपको बहुत कथा सुनना पड़ेगा साथ साथ आपको खुद पढ़ाई करना पड़ेगा गीता ग्रंथों की अध्ययन करना पड़ेगा तब जाकर वो दीक्षा समारोह पूर्ण होता है
It's like starting the engine of the car, but never taking the brake off.
जैसे आप गाड़ी को start कर रहे हो, लेकिन आप अपने brake को नहीं इस्तेमाल कर रहे हो.
It's like it's a very interesting story, not about a car, but about a boat.
एक सुंदर कथा है बोट के बारे में, बोट के बारे में.
Once upon a time, there was a marriage party, and it had to go to the other side of the Ganges for the marriage the next morning.
एक समय की बात है एक शादी था और शादी जो है बारात को नदी उस पार जाना था
एंड सो एवरीवन वेंट टू स्लीप इन द बोट
और बोट में सभी भारतीयगण बैठ गए और दूल्हा राजा भी बैठ गए शुभ मुहूर्त था वहां पे पहुंचना था और सबके बोट में बैठ कर घसकने लगा
एंड एट द सेम टाइम एवरीवन वाज रोइंग वेरी हार्ड इन द बोट टू गेट टू द अदर साइड द वर्कर्स यू नो द मैरिज पार्टी वाज स्लीपिंग द वर्कर्स वर वर्किंग
तो जितने बोट में नावगण थे वो लोग अपना चप्पू चलाने लगा और जो भारतीयगण है दूल्हा राजा उसके पप्पा सब सोने लगे
एंड दे वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड फाउंड आउट दे हैड दैट मूव्ड 1 सेंटीमीटर फ्रॉम वेयर दे वर
और रात भर बोट चला लेकिन जब सुबह देखा सूरज निकला तो देखा कि बोट तो 1 सेंटीमीटर आगे घसपे ही नहीं गया
बिकॉज़ दे हैड नॉट टेकन द एंकर आउट ऑफ द वाटर
क्यों उसका नाव आगे नहीं घटता क्योंकि जो लंगड़ है वो लोग लंगड़ नहीं निकाले थे नाव चप्पू चला रहे थे लेकिन लंगड़े नहीं निकाले
सो इन द सेम वे यू कैन टेक इनिशिएशन टुडे एंड वेक अप 50 इयर्स लेटर एंड फाइंड आउट यू नॉट एनी मोर कृष्ण कॉन्शियस बिकॉज़ यू हैवंट चैंटेड प्रॉपर्ली और रेड प्रॉपर्ली और हर्ड प्रॉपर्ली
तो आप शिक्षा के बाद में 50 साल बाद आप उठोगे तो आपको पता लगा आपने कभी आगे घसक भी नहीं करा क्योंकि आपने सुना ही नहीं बहुत कथा फिर आपने जप नहीं किया तो आपका कैसे नाव शरीर रूपी नाव कैसे आगे बढ़ेगा
सो देयरफॉर टू अंडरस्टैंड दिस संबद्ध ज्ञान एंड अभिधेय ज्ञान यू हैव टू स्टडी रीड और हियर एट लीस्ट
तो ये संबंध ज्ञान पहले समझ जाए जीव और परमात्मा का रिश्ता क्या है ये संबंध समझने के लिए गहराई में आपको खुद पढ़ना भी पड़ेगा
And then when you hear, you'll get practical instructions, abhideya, how to execute bhakti.
और जब आप सुनोगे, यानी कि अभिद्या काल में आ जाओगे, नौदा भक्ति के काल है, तो फिर वहां से वो सुनने के बाद में आप अपने जीवन में अमल करोगे, तो आपको जीवन में भक्ति आएगा.
And you'll understand who Krishna is, what he looks like, and even what Krishna's mobile phone number is.
तो आप जब ये सुन लोगे, तो आप समझ जाएंगे कृष्ण भगवान है कौन कैसा लगता है और उसका जो मोबाइल नंबर क्या है सब जान जाओगे
सो यू कैन टेक्स्ट हिम एट एनी टाइम
और आप उसको मैसेज भेज सकते हो
वेल वोडाफोन सो So therefore, my advice is please read Srila Prabhupada's books or hear classes by devotees on a regular basis, especially Bhagavatam.
Guru Maharaj ji ka aagya hai, khaskar jo log isse samaro mein, ki nirantar aap adhyan karte rahe, aur khaskar jo Srimad Bhagavat katha hai, iski adhyan aap nirantar karte rahe.
Just like sometimes people have Bhagavat Saptahas, right?
जैसे यहाँ पर आप देखे होंगे भागवत सप्ताह रहता है
एंड दे गो फॉर 7 डेज एंड दे थिंक ओके आई डिड माय सर्विस फॉर द ईयर
लेकिन ये लोग जाते हैं कथा सुनने के लिए तो वो सोचते हैं कि हमने अपने कान के लिए सेवा प्रदान कर दी
बट यू आर मेंट टू हियर भागवतम एवरी डे
खाली 7 दिन नहीं श्रीमद भागवत कथा जो है 18,000 श्लोक है आपको निरंतर कथा सुनना चाहिए
नॉट दैट यू जस्ट गो विद योर फ्रेंड्स फॉर सम भागवत सप्ताह सोशल इवेंट एंड देन फिनिश्ड
ऐसे नहीं कि मेल मिला और एक सोशल गैदरिंग है बस गए 7 रोज हो गए फिर उसके बाद भूल जाओ ऐसा नहीं होना चाहिए
सो दैट इज व्हाट साधना मीन्स इन द वैदिक भक्ति प्रैक्टिस that one follows the rules and regulations in order to cultivate or practice devotional service.
साधना वो है जो निरंतर रहता है प्राणी जो साधक है वो अपना नियम के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करता है ताकि वो भगवान के शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सके.
Just like when one learns anything, there is a period of practice.
जैसे कोई प्राणी कुछ अगर सीखना चाहता है तो उसको अभ्यास करना पड़ेगा तब वो सीख पाएगा.
When you first learn to drive the car, you don't just step in and drive away. You have someone with you, right? Who teaches you how.
जैसे आपको अगर गाड़ी चलाना है तो ऐसे थोड़ा कि आप सीधा जाएंगे और सीधा बैठ जाएंगे गाड़ी लगेगा ड्राइवर के जगह स्टार्ट करने ऐसे नहीं होता है. उसके लिए अभ्यास चाहिए. बगल में कोई बैठता है आपको सिखाता है तब आप सीख पाओगे.
He of course keeps one foot on the brake in case you don't know what you're doing. And then as you learn more, then they put a little, what is it called, a P on the back of your car? So you're a provisional driver, right? Or L, it starts with L, right? L and then P. And eventually you're able to drive, but it takes some practice. I remember the first time I started to drive a car when I was 16 years old. And I pushed down the accelerator, went very fast, and then all of a sudden the brakes, and it went like that, and I almost broke my neck. So, in the same way, Krishna consciousness requires some practice. So what is that practice? That practice is called Vaidhi Bhakti, which consists of regularly chanting your rounds, regularly hearing Srimad Bhagavatam. Eating prasadam. Waking up early in the morning, associating with devotees, worshipping Tulsi Devi. And so you practice this for many, many years. It takes a long time. Not tomorrow you will be Krishna conscious. That will not happen. Just like when I first joined the Krishna conscious movement, I thought I had become a pure devotee in one day. I was a brahmachari in those days. That's an extinct species nowadays. You just see some pictures of them, but they don't exist. So, then I would talk to all the other brahmacharis and say, yes, I know I am definitely a coward boy in the spiritual world. But then, as I began to practice bhakti more and more and more, I discovered all the cleaning that had to be done in the heart. Sometimes when you first go into a room, you don't notice how dirty it is, right? Then maybe you have swept all the dirt under the rug. And then when you get to work, all the dust starts flying in the air, and then you say, oh, I have a lot of work to do. So that dust in the air in one's heart is called an anartha, or unwanted thing.
ऐसा ही कई गर्दा जन्मों की हमारे हृदय में और उस गर्दान के नाम है अनर जो हमारे हृदय में जिसके कारण से परमात्मा की पहचान नहीं होता.
So that means, anartha means like lust, anger, greed, illusion, envy, fear.
And these six, which are the anartha, these are kaam, krodh, lobh, mad, moh, and matsya.
Is there anyone here who doesn't get angry sometimes?
Koi yahan par baitha hai mandir mein, wo kabhi gussata nahi.
Raise your hand if you never get angry.
Koi aisa mahapurush hai, sajjan purush hai, to aap bataiye.
So that person doesn't need to practice Krishna consciousness anymore.
अगर आप कभी नहीं गुस्साते हो तो आप कृष्ण भावना जप करने की कोई आवश्यकता
नहीं. So the sadhana process means to work to get rid of these anarthas. It's called anartha nivritti, that stage.
तो ये जो साधना करते निरंतर जो जप करते यही को तो निकालना है और कुछ को नहीं. ये अनर्थ हृदय जो जमा है इसको धोना है.
And so how does that do? How do you do that? By avoiding the 10 offenses on chanting Hare Krishna.
और ये अनर्थ निकालने के लिए आप जप करते रहे हो लेकिन 10 नाम अपराध है ये कदाचित कभी मत करना.
That means the 10 offenses are, the first offense is to blaspheme the devotees who dedicate their lives to propagating the holy name of the Lord.
जप तो सब कर लेते हैं लेकिन जप करते हुए 10 अपराध कभी नहीं करना नहीं तो अनर्थ जमे रह जाएगा. और पहला अपराध है जो भक्त लोग प्रचार करके वही पीछे पड़ जाते हैं खोज के वही पीछे पड़ेंगे.
The second offense is to consider the names of demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, Indra, Ganesh, or all the other 33 million of them, to be equal to or independent of the holy name of Lord Vishnu.
दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मा देवताओं को भगवान विष्णु या कृष्ण के नाम के बराबर समझना. ये तो बड़ा गहरा अपराध है.
If you chant Lord Vishnu's name, Krishna's name, it's watering the root of the tree. And all the demigods are taken care of automatically.
जो प्राणी विष्णु का नाम जप करता है कृष्ण के नाम जप करता है उसने पानी जड़ में छोड़ दिया है जड़ में छोड़ने से सब पत्ती को मिलेगा.
You don't have to worry about the demigods getting angry with you because Krishna will spank them if they get angry with you.
और पत्तियां जो यहाँ पर देवताओं के रूप से है जड़ भगवान श्री कृष्ण के रूप से जड़ को मिल गया सबको मिलेगा. अब चिंतित क्यों रहे हो अगर वो कुछ तकलीफ पहुंचाने चाहेगा तो भगवान आ जाएगा वहां पर.
Like he spanked Lord Indra when Indra tried to kill the residents of Vrindavan for not worshipping him.
अब जब श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराया थे तो ब्रजवासी ने गोवर्धन की पूजा की तो इंद्र गुस्सा गया था लेकिन कृष्ण जी अपने नख पर गरिराज गोवर्धन धारण किया कि तू मेरे नखुन के ऊपर उंगली के बराबर नहीं हो.
And the third offense to avoid is to disobey the order of the spiritual master.
तीसरा नाम अपराध है गुरु क्या हुआ क्या करना. गुरु अगर ये बोले लेकिन उसको सुनो नहीं तो आपका भक्ति कभी नहीं बढ़ेगा आप वही तने रह जाओगे. गुरु क्या हो गया कभी मत करना.
So the guru is speaking on behalf of Krishna, representing Krishna, and therefore we should take his words coming in disciplic succession as Krishna's instructions.
गुरु कौन है. गुरु भगवान नहीं है लेकिन भगवान का प्रतिनिधित्व है और सर्वदेव मैं हूं गुरु. 33 करोड़ देवताओं के प्रतिनिधि बनता है गुरु इसलिए गुरु की जो वाणी है उस पर चलोगे तो आपका जीवन सत्कार होगा.
नेक्स्ट डिफेंस is to blaspheme the Vedic literatures or literatures in pursuance of the Vedic version.
Chautha apradh hai ved shastro parmano ko khandan karna.
Just like you find groups here in Fiji, they say, oh, we like the Yajurveda, the Samaveda, but we don't like Bhagavatam, we don't like, isn't it? That is blasphemy.
Jaise Fiji mein zyadatar log rehenge jo karmakandi log hai पर मैं ऋग वेद चाहता हूँ मैं शाम वेद चाहता हूँ लेकिन भागवत नहीं चाहता लेकिन ये अपराध है. So we, तो उसके आप तिरस्कार कर रहे हो.
So we like all these books and even the Western literatures and every religion that point one towards God.
कोई भी भारत का शास्त्र हो ये सब शास्त्र हमें भगवान तक पहुंचाता है तो खंडन कैसे करेंगे.
The next offense to be avoided is to think that the glories of the holy name are imagination.
और पांचवा अपराध है कि भगवत नाम महिमा को काल्पनिक समझना कि हमें लगे ऐसे ऐसे काल्पनिक करना अपने मन में.
Actually Krishna namachintamani Krishna chaitanya rasa vigraha purna shuddha shuddha nitya mukto bina tvam namanamino. Krishna is directly the holy name. There's no difference between Krishna and his name. भगवान nama and nami.
भगवान के नाम को कल्पना नहीं करते ये काल्पनिक है बनावटी है ना जी. वो नाम जो है वो चिंतामणि है और साक्षात कृष्ण है. अगर ऐसा तुम अनुभव किया तो तुम्हारा जीवन शुभ हो गया.
Next offense is to give some mundane, speculative interpretation about the holy names.
और छठवां अपराध है भगवत नाम में अर्थवाद की आरोप करना, अपना अर्थ लगाना, अपना मतलब लगाना.
Next offense is to commit sinful activities on the strength of chanting.
और सातवां अपराध है कि भगवान नाम के जप करते रहो और पाप करते रहो, यानी कि भगवान के नाम लेते रहो, नमन पीते रहो, मांस खाते रहो, ये करते रहो, नाम लो पाप करो, नाम लो पाप करो.
That is like drinking the liquor and thinking I will just chant Hare Krishna between each drink.
जैसे आप दारू पीते हो तो आप जैसे
हरे कृष्णा
बीयर लेता है, आप बीयर पी लिया उसके बाद एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा, फिर राम पी लिया हरे कृष्णा हरे, यमुना पी लिया हरे कृष्णा.
या राम नाम सच है,
राम नाम सच बोल के से पीते रहो.
And then the next offense is to think that the chanting is like a ritual found in the Vedas, like some karma kanja ritual.
और ये अठवां नंबर ये भी बड़े बॉर्डर है जो सब जाने कि भगवत नाम को कर्म कांड में जो है ऐसे समझना कि मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा, मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा, भगवान के नाम जब करूंगा ऐसा ऐसा नहीं सोचना.
Next offense is to instruct the glories of the Lord to those who are faithless.
और नौवां अपराध है जो लोग अश्रद्धालु हैं, श्रद्धा नहीं है जिनमें, उनको भगवत नाम बताना भी शायद अपराध रहेगा.
And last offense is to maintain material attachments even after understanding so many instructions.
और दसवां अपराध है कि इतने उपदेश समझने पर भी उपदेश के ऊपर उपदेश हम सुन रहे हैं, कथा हम जाते हैं, मन गिर जाते हैं, उपदेश मिल रहा है लेकिन फिर भी वही में धसे रहते हैं, सुनना चाहते नहीं.
And finally, it's offensive to be inattentive while chanting.
और अंतिम में भगवान के नाम जप करो लेकिन दिमाग ध्यान के और है, यानी कि बल्ब में है, ऊपर है, पेन में, इससे भी कल्याण नहीं होने वाला.
It's like I know devotees who try to chant their japa and they're watching Bollywood movies at the same time.
श्रीमान कहते हैं मैं कुछ भक्तों को जानता हूँ जब तो कर रहे लेकिन आगे हेमामाली को देख रहे, फिल्म चल रहा है उसको देख रहे.
I know other devotees who are chanting and driving their car at the same time.
एक व्यक्ति को मैंने देखा भक्त है वो जब कर रहा है और फिर अपना गिया भी मार रहा है, वन टू मार रहा
है. They go, Hare Krishna, Krishna Krishna. That is not attentive chanting.
भगवान के नाम जब कर रहा है, गिया नंबर वन, गिया नंबर टू, थ्री, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फोर रिवर्स.
Or other devotees there on the computer while they're chanting, Hare Krishna, Facebook.
और कुछ कुछ भक्त कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं और वो भगवान के नाम जप करते हैं फेसबुक में, फिर अपना रिमोट हटाएंगे, घसकाएंगे और जप करते हैं.
So we should, when we're chanting, we should just pay attention to the name. You can walk while you're chanting, that's okay.
आप जब चलते हो आप जप कर सकते हो लेकिन चलते समय तो ध्यान तो रहेगा लेकिन और कुछ करते हुए दिमाग वहां नहीं रहता है, तो क्यों आप जप कर रहे हो, उससे लाभ क्या होगा.
But everyone should finish 16 rounds every day.
और जो भक्त है शुद्ध भक्त है उसको हमेशा 16 माला निरंतर खत्म करना चाहिए, एवरी डे यानी कि रोज 16 माला उसका होना चाहिए.
Since I joined the Krishna Conscious Movement, I have never failed to chant 16 rounds every day.
गुरुमहाराज कहते हैं मैं कितने साल पहले, लगभग 40 साल पहले मैं जब कृष्ण भवन में आया, 40 साल से ज्यादा मैं भगवान के 16 माला रोज जप करते आया.
And on certain days like Ekadasi, I try to chant 64 rounds.
और एकादशी जब आता है महीना में दो बार जो एकादशी आते हैं उस दिन मैं 64 राउंड घुमाता हूँ.
And it gets better every day chanting.
और मेरा जो राउंड से भगवान के प्रति निष्ठा है, नाम लेना और अच्छा हो रहा है और मजा लग रहा है.
The great devotees, they pray for millions of mouths and tongues and ears to hear the holy names.
जो महान भक्त रहते हैं वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान मुझे हजार हजार जिह्वा दो ताकि मैं तुम्हारा नाम ले सकूं, मुझे हजार हजार कान दो ताकि हम कथा सुन सके, लेकिन यह ऐसा नहीं, हजार कान नहीं, दो कान हम वो भी सोते हैं.
So that's part of the sadhana practice. And hearing Bhagavatam, chanting nicely, eating prasadam, worshipping Tulsi Devi, associating with the devotees.
तो ये कानों के द्वारा हम रोज कथा सुने, भगवान के नाम जप करें, तुलसी माता की सेवा करें भक्तों के संग में रहे, भक्तों के साथ में प्रसाद खाए, और ये सब करने से आपका भक्ति बढ़ जाए.
Then you become happy. Everyone wants to become happy.
सभी लोग एकदम संतुष्ट हो जाएंगे और एकदम प्रसन्न हो जाएंगे और सुख को अनुभव करेंगे.
So that's the first initiation. The second initiation is called Brahman initiation or Gayatri initiation.
वो जो पहला वो दीक्षा था, वो जिसको हरिनाम दीक्षा, जो यहाँ पर भक्त लोग हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं, और दूसरा जिसको सेकंड इनिशिएशन कहते हैं, जिसको ब्राह्मण दीक्षा है.
Brahman doesn't mean that we're going to change your name to Trivedi or Chaturvedi or Sharma or something like that. Give you a new name, a new Brahman name. That's not what it means. It means you get the qualities, you should try to develop the qualities of a Brahman.
So, jo Brahman diksha hai, jo log pehla diksha le rahe the, to uske baad mein jab karte gaye, tab Brahman diksha. Jo Brahman diksha le rahe the, char nahi hai ki main yahan unka naam badli dunga, Trivedi, Chaturvedi, main wo naam nahi badl sakta. Brahman ka arth ye hai ki ab tumhare mein div gun grahan hona chahiye, yani divta aana chahiye, usko Brahman diksha kehte.
A Brahman is known to be a Brahman by his or her qualities.
Brahman ka pehchan uska div gunon se prasidh hota hai.
Not that by being born in a Brahman family that you're automatically a Brahman.
Brahman ke ghar mein janm se aap Brahman nahi ho jate.
It's just like if one is born in a family of doctors, does that give one the permission to operate?
Aur agar aapke pitaji doctor hai,
that would be foolish.
आप जाके ऑपरेशन कोई करेगा? आप नहीं, आपके बाप डॉक्टर है, आप नहीं.
You know, some young boy says, my father is Dr. Maharaj in Rupanuga. So let me cut you open and see where your liver is.
जैसे सुबह में एक डॉक्टर है रूपनुगा, और वो उसका लड़का समझो रिसाल है, तो लड़का बोलेगा, वो डॉक्टर नहीं बोलेगा, ठीक है आओ हमारा पापा डॉक्टर है, यहाँ से ऑपरेट करके देखिए पहुंचिए तो अभी तक.
No, anybody can become a doctor if they go to medical school, if they go to the hospital, they get trained properly. Anybody from any family can become doctor, right?
कोई भी डॉक्टर बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास चाहिए, उसके लिए आपको बोनाफाइड स्कूल चाहिए. आप स्कूल जाओगे, फिर स्कूल ऑफ मेडिसिन, वहाँ अभ्यास लोगे, शिक्षा लोगे, शिक्षा को ग्रहण करोगे, फिर आप डॉक्टर बन गए.
It's open to everybody.
सबके लिए.
Men, women, it doesn't matter.
चाहे स्त्री पुरुष बेटा कोई भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अभ्यास कीजिए, आप फिर स्कूल जाइए, आप डॉक्टर बन जाओगे.
सो इन द सेम वे एनीवन कैन बिकम अ ब्राह्मण.
कोई भी ब्राह्मण बन सकता है.
यू कैन बी बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली एंड बिकम अ ब्राह्मण.
आप चाहे भले एक मुसलमान कुल में जन्म लिए, लेकिन आप ब्राह्मण बन सकते हो.
यू कैन बी बोर्न इन लेट्स से एन एबोरिजिनी फैमिली एंड बिकम अ मुस्लिम. Become a Brahmin.
आप आदिवासी के कुल में जन्म लिए हो, आप ब्राह्मण बन सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण तो जिन गुण से प्रसिद्ध होते हैं.
All you have to do is be trained with the knowledge and the qualities.
और क्या करना है वो ब्राह्मण बनने के लिए, आपको वो जो तैयारी है और वो तैयारी ज्ञान के साथ करना है, और अपने जीवन में अमल करना है वो दिव्य गुण को धारण करते हुए.
And what are those qualities? Sama, Damak, Dapakcho, Cham, Shanti, Raju, Me, Vakya, Cha, Yana, Vigyana, Must, Vikyam, Brahma, Karma, Svabhavajam. First quality is being equipoised in happiness and distress.
So, ye jo nau gun hai, Bhagavad Gita mein Krishna Bhagavan Arjun se keh rahe ki jo Brahman ka gun hai, aur pehla, jo Shama, yani ki ek samadrish dhanna, agar hum samadrish ek sab ke saath hai, to ye Brahman jaisa gun tumhare.
Dhamma means self-controlled, also that you don't allow your senses to drag you all over the place.
Brahman ka arth ye bhi hai, indriyay ko bas mein dhanna, wo bhag na paaye kahin, ye bhi Brahman ka gun hai.
Then austere means accepting everything to please Krishna.
Aur uske baad mein teesra jo hai, yani ki sab ko tapasya swikar karna taki aap Bhagwan Sri Krishna ko santusht kar sake.
And rejecting things that don't please Krishna.
Aur usko तिरस्कार करना जो भगवान श्री कृष्ण की अनुकूलता में नहीं.
एंड शौचम क्लीनलीनेस.
और जो शौचम है यानी कि सफाई, शुद्धता भीतर.
इंटरनली बाय ऑलवेज रिमेम्बरिंग यत् स्मरेत् पुनरिकाक्षम सभाय अभ्यंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु. एंड एक्सटर्नली बाय रेगुलरली बेथिंग एंड क्लेंजिंग वन्स बॉडी.
ब्राह्मण हमेशा शुद्ध रहता है, यानी कि भीतर से और बाहर से, भीतर से और भगवान के नाम जप करता है, हृदय शुद्ध रहेगा, और बाहर से हमेशा नहाते रहता है.
Just like Prabhupada said, Those people who have a Brahman thread but don't have the qualities of Brahman can be called sacred thread holders, not Brahmanas.
Prabhupada ji, unka guru keh raha ki mera guru ne kaha tha jo log janoit dharan karte hai aur Brahman jaisa gun nahi hai, to wo log ko Prabhupada ji kehte hai do peni janoit Brahman.
So other qualities, tolerance, honesty, religiosity, and as we mentioned, jnana, regularly hearing from the Vedic literatures, jnana, and this way you'll realize the vijnana.
और उसके साथ साथ में ज्ञान होना चाहिए. ज्ञान बड़ा अनमोल है. जो ब्राह्मण रहते हैं ज्ञान की तलाश में रहते हैं और ज्ञान के साथ में जो विज्ञान है उसके अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं.
So this is a Brahmin. That's a real Brahmin.
इसको सच्चा ब्राह्मण कहते हैं.
So many devotees here are taking that second initiation today. In any case, one can go back to home, back to Godhead, just by chanting Hare Krishna perfectly. Because that is the Yuga Dharma taught by the Yuga Avatar, Sri Chaitanya
Mahaprabhu.
And all of you are joining Srila Prabhupada Society, the International Society for Krishna Consciousness. And promising to remain loyal to His Divine Grace Srila Prabhupada and His mission. And understanding Srila Prabhupada as the founder, Acharya of the International Society of Krishna Consciousness is our primary source of siksha or instruction and guidance. I am simply serving His Divine Grace, Srila
Prabhupada. मैं उसको हमेशा सेवा प्रदान करते आ रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मैं अपना प्राण नहीं छोड़ूं.
Yeah, I am not claiming anything for myself except that I'm serving Srila Prabhupada.
मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता हूँ. मैं बस इतना चाहता हूँ मैं अपने गुरु जो है ऐसे भक्तिवेदांत प्रभुपाद मैं उसका जो कार्रवाई है उसको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ.
That's the first and most important quality in a guru, that submit pani shrotriyam brahmanishtam, that he is actually a humble servant of his guru.
और यही परम जो शिष्य रहते हैं उनका परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि अपना गुरु का एक अच्छा एक श्रद्धालु शिष्य बने.
Remember, all of you, all of us, me, everyone, it's ultimately a servant. That's our constitutional position.
हम जितने लोग यहाँ बैठे एक बात भूलना नहीं, कोई यहाँ मालिक नहीं है, क्योंकि हम जीव है और उसका स्वरूप है, वो नित्य भगवान का दास है और वो दास स्तर से कभी हम भूले नहीं कि हम दास है, हम मालिक नहीं.
That's why we get the name Das or Dasi at the end of our name.
इसलिए दीक्षा समारोह में आप सुनेंगे जितने लोग दीक्षा लिए वो अंत में उसका नाम दास हो जाता है या तो दासी, यानी कि वो स्तर से कभी दिख लेना.
None of you will get the name Sri Bhagawan.
आप लोग के कोई नाम ऐसे नहीं दूंगा कि मैं भगवान.
You may get the name Bhagawan Das, but nobody here will be Bhagawan.
भगवान दास दे सकता हूँ ना, लेकिन भगवान नहीं दूंगा.
Actually, there is one disciple I have in Fiji. His name is Bhagawan. In Fiji. Yeah, well, he's not Nandi anymore. He migrated.
Oh,
yeah, there's better business in New Zealand. He used to be the head priest in the temple there in Nandi. So now he's gone to New Zealand for his good fortune. Okay, so now we'll proceed with the initiation, giving the names to the candidates for initiation.
और नाम जाएंगे आगे आएंगे.